आशी इस वक्त तृप्ति से मिलने के लिए आई हुई थी। वो तृप्ति पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि आशिका अभी तक नहीं मिली थी। ऐसे में उसे पता चला था कि आशिका का नाम भी नहीं बदल गया था, तो वो और ज्यादा भड़क गई। इस बीच सेलिना वहां पर आई। सेलिना भले ही तृप्ति की सौतेली बेटी हो, लेकिन वो उसे बिल्कुल अपनी माँ की तरह प्यार करती थी। आशी को इस तरह तृप्ति पर चिल्लाते देख वो गुस्सा हो गई और आशी से बहस करने लगी। बातों ही बातों में सेलिना ने बताया कि उसने आशिका को ढूंढ लिया है, लेकिन इस वक्त वो अभिमान राजवंश नाम के बिजनेसमैन के साथ है। अभिमान का नाम सुनते ही तृप्ति और आशी को झटका सा लगा। सेलिना के लिए भले ही अभिमान एक अनजान बिजनेसमैन हो, पर तृप्ति व राशि अच्छे से जानती थीं कि इस वक्त अगर आशिका किसी के साथ सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो अभिमान है। पूरा सच जानने के बाद आशिका अपने गुस्से पर काबू रखना नामुमकिन सा हो गया था। उसने गहरी सांस ली और फिर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी थी। उसे इस तरह हंसता देखकर सेलिना ने तृप्ति से धीमी आवाज में कहा, लगता है ये पागल हो गई है। तृप्ति ने सेलिना को इग्नोर किया और आशी के पास जाकर उसका कंधा सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी, मुझे बस मिस्टर स्काई को इस बारे में बताना है। आशी ने तृप्ति का हाथ झटका और दांत पीसते हुए कहा, और जाकर क्या कहेंगे उन्हें? अगर आकाश अंकल आशिका को ढूंढते हुए अभिमान के पास गए तो उसके सामने ये सच खुल जाएगा कि एक न एक दिन वो उसकी माँ को छोड़ देंगे। ऐसे में अभिमान मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। क्या पता इन सबके बीच में उसे ये भी पता चल जाए कि आशिका सिंघानिया कौन है। आशी तो ये सोचकर ही परेशान हो रही थी कि अगर गलती से भी आशिका का सच अभिमान के सामने आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। वहीं सेलिना को भी पता चल गया था कि आशी और क्षिप्ति के इरादे क्या हैं। वो दोनों ही आशी की शादी अभिमान से करवाना चाहती थीं। सेलिना ने बीच में बोलते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, तुम अभिमान राजवंश से शादी करना चाहती हो? आई लाइक हिम, ही इज नॉट योर टाइप। ओ रियली? आशी ने भौहें उठाकर कहा, जिसे तुम नॉट माई टाइप कह रही हो वो 5 साल से मेरा पति है, और गलती से भी उसके आसपास जाने की कोशिश भी मत करना। सेलिना को सुनाने के बाद आशी ने तृप्ति की तरफ देखकर कहा, आप खुद तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है ही, लेकिन अपने साथ दो और मुसीबत को लेकर चली आई हैं। एक मेरे पति के साथ न जाने क्यों रह रही है और दूसरी उस पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। तृप्ति ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। ऐसा नहीं था कि उसे सेलिना से कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ बात उसकी खुद की बेटी की थी। तृप्ति ने उम्र भर उसे दूर रहना चुना सिर्फ उसे खुशियां देने के लिए। ऐसे में वो उन खुशियों के आगे न तो आशिका को आने देने वाली थी और ना ही सेलिना को। तृप्ति ने सेलिना की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, सेलिना, तुम इन सब मामलों से दूर रहो। वैसे भी मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम कभी एक लड़के के साथ सेटल होने के बारे में सोच भी नहीं सकती हो। वैसे भी अभिमान राजवंश की शादी आशी के साथ कब की हो चुकी है। मैं इस मामले में मिस्टर स्काई को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, तो तुमने आशिका को जहां भी देखा है उसे यहां तक लेकर आना तुम्हारा काम है। लेकिन मॉम, आपके और मिस्टर स्काई के बिना मैं कैसे कर सकती हूँ? आप खुद क्यों नहीं चलती मेरे साथ? आपसे वो बहुत डरती है, सेलिना बोली। तृप्ति कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। वो अभिमान के सामने नहीं जा सकती थी। जब तृप्ति ने बचपन में आशिका को किडनैप किया था, तब अभिमान ने उसे देख लिया था। भले ही इतने साल बीत गए हों, लेकिन तृप्ति को आज भी यही डर था कि अगर वो अभिमान के सामने गई और उसने उसे पहचान लिया तो फिर क्या होगा। तृप्ति के चेहरे पर हल्के डर के भाव थे। उसने तुरंत ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकती। समझ नहीं आता तुमने उसे सेकंड चांस दिया ही क्यों, सीधा घसीट कर यहां लेकर आना चाहिए था। लेकिन नहीं, अच्छा लड़का देखा नहीं और तुम्हारी फितरत बदल जाती है। जरूर उस लड़के के बहकावे में आकर ही तुमने उस आशिका को छोड़ दिया होगा। तृप्ति सेलिना पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही थी। आज से पहले सेलिना जब भी किसी अमीर लड़के के साथ घूमती फिरती और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाती थी, तब तृप्ति उसे हर तरह से सपोर्ट करती थी। उल्टा वो दोनों उसके बॉयफ्रेंड के पैसे पर ऐश करते थे। मॉम, आप मुझसे इस टोन में क्यों बात कर रही हैं? मैं कभी किसी के पीछे नहीं जाती हूँ। वो मुझे पसंद आ गया और ही इज काइंड ऑफ नेक्स्ट डोर बॉय। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी इंसल्ट करेंगी, सेलिना ने नाराजगी जताते हुए कहा। तो क्या गलत कह रही है ये, आशी बीच में पड़ते हुए बोली। तुम अभी अभिमान और आशिका के पास जा रही हो उसे और उसे यहाँ लेकर आओगी। अगर तुम्हारी वजह से मैंने अभिमान को खो दिया या उस आशिका ने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। आशी के इस तरह धमकाने और तृप्ति के साथ देने पर सेलिना को भी गुस्सा आ गया। उसने आशी की तरफ घूर कर देखा और चैलेंजिंग वॉइस में कहा, अगर इतना ही है तो जाकर खुद क्यों नहीं ले आती? वैसे भी आशिका मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है, जिसके लिए वो मुसीबत है वो उसे खुद ढूंढे। सेलिना वहां से जाने लगी। आशी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आशी को धकेल के वहां से निकल गई थी। देखा आपने इसने क्या किया मेरे साथ, आशी ने दांत पीसते हुए कहा। उसे जाने दो, वो बहुत गुस्सैल और जिद्दी है। बहुत कम उम्र में उसने अपनी माँ को खो दिया था और वो उन्हें बहुत मिस भी करती है। ऐसे में मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारी कमी पूरा करने के लिए उसे बेटी की तरह पाला था। थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो खुद आ जाएगी, तृप्ति ने आशी को समझाने की कोशिश की। आशी ने गहरी सांस ली और चिढ़न भरे लहजे में कहा, मुझे आपकी इमोशनल स्टोरी सुनने का कोई शौक नहीं है। एक हफ्ते में मेरे और अभिमान की शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। आई टेल यू, उसमें आपकी सो कॉल्ड आशिका सिन्हानिया की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको भी नहीं छोड़ने वाली। इतना कहने के बाद आशी वहां से चली गई। वहीं तृप्ति को आशिका पर गुस्सा आ रहा था। एक तो उसकी वजह से स्काई उसे ब्लैकमेल कर रहा था, ऊपर से उसकी खुद की बेटी की जिंदगी भी मुसीबत में आ गई थी। एक बार तुम मेरे पास वापस तो आओ आशिका सिन्हानिया, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार से पेश आ गई, वरना तुम भूल गई हो कि तृप्ति बजाज कौन है और बचपन में कैसे उसने तुम्हारी अकले ठिकाने लगाई थी, तृप्ति ने गुस्से में कहा। उसके दिमाग में पुरानी यादें ताजा होने लगी थी। जब आशिका पहाड़ी से गिरी थी तब वो लगभग 3 दिन बाद होश में आई थी। किडनैपिंग और पहले के ट्रॉमा की वजह से उसे पुरानी बातें ठीक से याद नहीं थी, लेकिन फिर भी जब भी आशिका तृप्ति को अपनी माँ मानने से इनकार करती थी तब तृप्ति उसे बुरी तरह मारने लगती थी। तृप्ति ने आशिका की पुरानी यादों को पूरी तरह मिटा दिया था। यही वजह थी कि आशिका को अपने बारे में एक छोटी सी बचपन की याद भी दिमाग में नहीं थी। दूसरी तरफ राधिका इशिका को लेकर सिंघानिया मेंशन आ गई थी। इशिका ज्यादा सवाल न पूछे ये सोचकर थोड़ी देर के लिए राधिका ने केशव को बाहर भेज दिया था। बाद में केशव के वहां रुकने के लिए कैसे मैनेज करना था ये राधिका अच्छे से जानती थी। राधिका इशिका को उसके पुराने कमरे में सेटल करना चाहती थी, पर इशिका की यादों के हिसाब से वो कमरा आयशा का था, वो वहां कभी नहीं रहती। सिंघानिया मेंशन आते ही इशिका ने कहा, मैं ठीक हूँ और पहले की तरह बेसमेंट में रह लूंगी, मेरे लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मिसेस सिंघानिया।
ये तुम कैसी बातें कर रही हो इशिका, और बार बार ये क्यों कहती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्यों परेशान हो रही हूँ? देखो, आगे से मुझे तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुनना। और तुम उस अंधेरे सीलन भरे बेसमेंट में क्यों रहोगी? तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहने के लिए चल रही हो, राधिका ने सख्त आवाज में कहा। लेकिन मिसेस सिंघानिया, इशिका ने उन्हें रोकना चाहा पर राधिका ने उसे आंख दिखा दी थी तो इशिका चुप हो गई थी। घर के अंदर जाकर इशिका हैरानी से इधर उधर देख रही थी। घर का इंटीरियर और काफी सारी चीजें पूरी तरह बदल चुकी थी। ये चेंज केशव ने करवाया था ताकि राधिका और इशिका की इन चीजों को देखकर पुरानी बुरी यादें ताजा ना हो जाएं। इशिका की आंखों में उलझन और सवाल देखकर राधिका ने कहा, मुझे पुरानी चीजें पसंद नहीं आई थीं तो मैंने सब कुछ चेंज करवा दिया। इशिका ने बिना कुछ कहे उसकी बात पर हामी भर दी थी, हालांकि उसके मन में काफी सवाल चल रहे थे। इधर उधर देखते हुए इशिका ने मन ही मन कहा, ऐसे लग रहा है जैसे ये घर ही नहीं मिसेस सिंघानिया भी बदल गई हैं। मैं खुश हूँ कि अब ये पहले की तरह बीमार नहीं है, लेकिन जब भी मिस्टर सिंघानिया और आयशा का जिक्र आता है उनके चेहरे पर अजीब सी मायूसी के भाव उभर आते हैं। इन्होंने कहा कि मालविका मिस्टर सिंघानिया और आयशा के साथ ट्रिप पर गई हुई है, जबकि मिस्टर सिंघानिया तो मालविका को अपने आसपास तक बर्दाश्त नहीं करते हैं। मिसेस सिंघानिया क्या मुझसे कुछ छुपा रही हैं? इशिका खोई हुई थी। तभी राधिका ने कहा, मैंने अपना रूम भी चेंज कर लिया है, अब मैं उस पुराने कमरे में नहीं रहती। चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ ताकि तुम अच्छे से सेटल हो जाओ। वैसे शाम को हमारे कुछ खास गेस्ट आने वाले हैं, उनमें से एक मिस्टर केशव सिंघानिया हैं, जो हमारे बिजनेस पार्टनर भी हैं और फैमिली भी। काम के चलते वो कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहने वाले हैं। इशिका ने बिना किसी सवाल के उनकी बात मान ली थी। वैसे भी राधिका उसकी सुन नहीं रही थी तो इशिका ने भी बहस करना सही नहीं समझा। राधिका के कमरे में रूही, इशिका और केशव की काफी सारी तस्वीरें लगी हुई थी, उसने वो सब हटा दी थी। रूही ज्यादातर केशव और राधिका के साथ रहती थी। इशिका की हेल्थ के चलते उन्होंने रूही को भी राजवंश विला में भेज दिया था। इशिका ने अपना सामान राधिका के कमरे में रखा, हालांकि उसे ऐसा करते हुए बहुत अजीब लग रहा था। राधिका हमेशा से उसकी आइडल रही थी, इस वजह से इशिका का बिहेवियर उनके साथ काफी फॉर्मल था। इशिका को छोड़कर जब राधिका कमरे से बाहर गई तब इशिका ने नम आंखों से मन ही मन कहा, कभी सोचा नहीं था मिसेस सिंघानिया कि आपके साथ रहने का मौका मिलेगा। दिल में हमेशा ये ख्वाहिश थी कि आप मेरी माँ हो, लेकिन बदकिस्मती से वो मालविका मेरी माँ है और उसने कभी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल होने वाले हैं जो मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। बचपन में जब भी राधिका आयशा का हर छोटा काम करती थी तब इशिका दूर से उन्हें देखा करती थी। उसके मन में यही आता था कि उसकी माँ मालविका भी ये सब उसके लिए करे, उल्टा मालविका तो उसे मारती और ताने कसती थी। इशिका के मन में तब यही ख्याल आता था कि काश वो भी राधिका की बेटी होती। इशिका कुछ देर तक अपने इमोशंस में खोई रही, तभी राधिका वहां आ गई। उसने इशिका को तैयार होने को कहा, वैसे भी शाम को उनके खास गेस्ट आने वाले थे। ऐसे में राधिका नहीं चाहती थी कि इशिका इस तरह उनके सामने जाए। दूसरी तरफ अभिमन्यु इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था। इस बीच पृथ्वी वहां पर आया और उसने अभिमन्यु के सामने कुछ पेपर्स रख दिए थे। वो उन दवाइयों की रिपोर्ट थी जो इशिका के लिए बदली गई थी। अभिमन्यु ने उस रिपोर्ट को देखकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। उसे गुस्सा आ रहा था। पृथ्वी ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, आपका शक बिल्कुल सही है। इनमें से कुछ दवाइयाँ वो हैं जिससे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाई जा सके, लेकिन बाकी दवाइयाँ भी नॉर्मल नहीं हैं। लैब रिपोर्ट से यही बाहर निकल कर आया है कि ये दवाइयाँ अक्सर उन पेशेंट को दी जाती हैं जिन्हें शिजोफ्रेनिया होता है। उन्हें भ्रम पैदा होते रहते हैं और अजीब चीजें दिखती हैं। ऐसे में ये दवाइयाँ उनकी पुरानी यादों और घटनाओं को भुलाने में मददगार साबित होती हैं। लगा ही था, नक्श राजवंश जैसा इंसान इतनी दूर से चलकर यहाँ क्यों आएगा? वो यही चाहता है कि इशिका की मेमोरी वापस न आए। शुक्र है कि यशिका ने इनमें से कोई भी दवाई नहीं ली। फिर भी मिसेस सिंघानिया से बात करो और बोलो कि यशिका के फिर से टेस्ट करवाएं और इस बार उसकी मेडिसिन और बाकी चीजों का खास ख्याल रखें। अभिमन्यु ने जवाब दिया। पृथ्वी आगे कुछ कहता उससे पहले अभिमन्यु ने कहा, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अभिमन्यु काफी परेशान लग रहा था। पृथ्वी ने कुछ पल उसे देखा और फिर वहां से चला गया था। अभिमन्यु को इस वक्त गुस्सा भी आ रहा था तो साथ ही लाचारी भी महसूस हो रही थी। शुक्र है जो मैं सही वक्त पर उसका प्लान और इरादे समझ गया, वरना धीरे धीरे तुम्हें खो देता और एक झटके में हमारे बच्चे को। यशिका, तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना होगा, मेरे लिए और हमारे बच्चे के लिए, अभिमन्यु बोला। आज जो भी हुआ था उसके बाद अभिमन्यु किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए उसने यशिका के पास बाकी जो दवाइयाँ भिजवाई थी वो किसी ट्रांसपेरेंट बॉटल में होने के बजाय उनके ओरिजिनल पैकेट में थी। तो वहीं आज की घटना के बाद यशिका भी सतर्क थी। जब उसके पास दवाइयाँ पहुँची तो वो उनके कॉम्पोनेंट्स और नाम देख रही थी। यशिका खुद एक रिसर्चर थी जो कि मेडिसिन के फील्ड में काफी कुछ अचीव कर चुकी थी। ऐसे में उनमें से एक दवाई ऐसी थी जिसे देखकर यशिका सकते में आ गई थी।